Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
तब वो भी विश्रांति खोजता है, शरीर भी विश्रांति चाहता है, इंद्रियां भी विश्रांति चाहते हैं, मन भी विश्रांति चाहता है। तब इस अवस्था में विश्रांति के लिए कहां जाएं? जागृत में जहां भी जाओगे परिश्रमी ही होगा, स्वप्न में तुम जहां भी जाओगे परिश्रमी ही होगा। तब परमात्मा की कृपा है कि सुसुप्ति एक ऐसी अवस्था बना दी कि गहरी निद्रा में चला जाता है थकने के बाद। जागृत स्वप्न उपभोगा भोग उत्थ, जागृत भोग स्वप्न भोग से उत्पन्न हुआ हुआ विश्रांति यानी थकान, श्रम थकान, उसकी विश्रांति के लिए विच्छित हेतवे उस थकान को, उस श्रम को हटाने के उद्देश्य से, कम करने के उद्देश्य से। सुसुप्तिम पुरुषे प्राप्ते शरीर शरीरम अविरक्षितुम, उस अवस्था में जीवात्मा सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है, गहरी निद्रा में जाता है। क्यों जाता है? परिश्रम को कम करने के लिए, थकान मिटाने के लिए। जो थक गया शरीर परिश्रम से, इंद्रिया मन उसके विश्रांति के लिए गया। अब वो आत्मा सुसुप्ति में चला गया, फिर शरीर की रक्षा कौन करेगा? बोलो। तो परमात्मा की ये व्यवस्था है कि तू जा थोड़े आराम कर ले, तब तक जब तक तू आराम करेगा तब तक इसकी रक्षा करने का काम ये करेगा। कौन करेगा? प्राण। ये परमात्मा की व्यवस्था है, तू जब तक करना है कर ले ना, तू आराम कर ले जा, ये करेगा। आप लोग भी शिफ्ट चेंज करते हो कि नहीं? आप लोग भी तो शिफ्ट चेंज करते हो ना। अब ये आश्चर्य की बात है कि प्राण वो शिफ्ट चेंज नहीं करता है, आत्मा शिफ्ट चेंज कर ले, इंद्रियां शिफ्ट चेंज कर ले, मन कर ले, आराम कर ले वे, लेकिन प्राण जागृत में भी कर्म करता है और स्वप्न में भी, सुसुप्ति में भी, तीनों अवस्था में प्राण कर्म करता रहता है। इसलिए वो क्यों नहीं थकता है? क्योंकि उसमें चेतना नहीं है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, संवेदना नहीं है। संवेदना होती तो वह परिश्रम से थक जाता, वो भी उसमें संवेदना नहीं है इसलिए वो थकता नहीं। तो लगा हुआ एक बार बना दिया नियम, वो लग गया, ऑटोमेटिक हो गया, वो संवेदना नहीं। वो क्यों जागता रहता है? वो क्यों विश्रांति को प्राप्त नहीं होता? क्योंकि उसके ऊपर बड़े भारी जिम्मेवारी रहती है। क्या जिम्मेवारी है उस प्राण के ऊपर? बोले इंद्रियां भी हराम हो गई, जब खाने को मिले तो सब जग जाते हैं, है? थोड़ा रस और पूरी सामने आए तो देखो जीवा कैसे छटपटाता है, यह हराम है, खाने के लिए तो तत्पर है। और शरीर के टिकाने रखने क्या, ये इसको कोई भान ही नहीं है, शरीर की कोई चिंता नहीं है इस इंद्रियों को। मन को भी वही हालत है, उसको अपना विषय मिलता रहे तो देखो, और लेकिन उसको भी शरीर की चिंता नहीं है। जब अपने आप विश्राम करना होता है तो वो चुपचाप चले जाते हैं, सब मिलकर यूनियन की तरह, यूनियन स्ट्राइक करते हैं कि नहीं? एक एक नहीं, एक ही साथ यूनियन की तरह स्ट्राइक कर देते हैं और चले जाते हैं। बाण में जाए शरीर, हमको तो आराम करना है। अरे भाई, तुमको आराम करना है, शरीर की रक्षा कौन करेगा? हमको उसकी चिंता नहीं है। अरे मूर्खो, तुमको चिंता नहीं, हमको तो चिंता है ना? तो परमात्मा को चिंता है, इसीलिए प्राण की ड्यूटी लगा दिया कि तू इसको टिकाए रखना, ये हरामी जब तक उठ कर नहीं आएंगे, हाँ, ये तेरी जिम्मेवारी है, ख्याल रखना। तो शरीर मान लो कि पूरे शरीर की मालिक वही प्राण है, जैसे मालिक को ही ज्यादा चिंता है कि मेरे फैक्ट्री को कैसे चलाना है, लेबर को कोई चिंता नहीं, तो स्ट्राइक में चले जाएंगे, अपने मतलब के लिए है ये इंद्रियां तो सब लेबर हैं, है? मान लो प्राण मालिक की तरह है। जागृत स्वप्नोपभोगोत्थ श्रम विच्छित्ति है तवे सुसुप्तिम पुरुषे प्राप्ते शरीरम अविरक्षितुम शेष कर्म उपभोगार्थम प्राण चरति केवलम। इस शरीर को टिकाने की चिंता क्यों हुई भाई, चाहे परमात्मा को हुई हो, चाहे प्रकृति को हुई हो, चाहे प्राण को ही हुई हो, इंद्रियां और अंतःकरण ये सब सुसुप्ति में विश्राम के लिए चले जाते हैं, तब शरीर को टिकाने की चिंता परमात्मा को क्यों हुई, प्रकृति को क्यों हुई, या समझ लो कि प्राण को ही क्यों हुई, इसका कारण क्या है? ये इंद्रियां सब आरंभ चले गए तो शरीर नष्ट हो जाओ और क्या, कह दो इंद्रियों को जब जगे, अरे हमारा गोला कहां गया, बोले तुम हराम हो, कोई एक ही साथ चले गए, तुमने चिंता ही नहीं किया, हम सब जाने के बाद इसका क्या होगा, तुमने चिंता नहीं किया, तो तुम लोग चले गए तो नष्ट हो गया, हम क्या करें, कह देते, जवाब दे देते है? वो भी नहीं चलेगा। बताया यहां ये ध्यान देना, शेष कर्मोपभोगार्थम, बाकी जो बचे हुए कर्म का भोग करना आवश्यक है, और भोग किए बिना ये कर्म समाप्त होंगे नहीं। और इंद्रियां करण सुसुप्ति में जाते ही शरीर नष्ट हो जाएगा, तो बाकी शेष प्रारब्ध, बाकी शेष कर्म, शुभाशुभ कर्म फिर कहां भोगेगा, कब भोगेगा, फिर न जाने कब उसको शरीर मिले, तो फिर जब सुसुप्ति में गए फिर दोबारा पैदा होना पड़ेगा, फिर सुसुप्ति में गए शरीर नष्ट हो गया, फिर दूसरा शरीर पैदा हो, फिर सुसुप्ति से जागे, फिर शरीर जागे तब तक भोग कर लो, फिर भोग से थक जाएंगे, क्योंकि ये तो थकने वाले हैं, ये तो बता ही रहे हैं, इंद्रियां और करण तो थकने वाले ही हैं, कुछ दिन थक जाएंगे, कहेंगे हम आराम करने जाएंगे, तब तक शरीर नष्ट हो जाएगा, तो फिर बाकी भोगने के लिए क्या करोगे, बोले दूसरा शरीर तैयार करो, इससे अच्छा तो जो शरीर पहले बन चुका है कुछ दिन इसी को टिकाओ। ये सब विराम विश्राम करते रहेंगे, आते रहेंगे, भोगते रहेंगे, विश्राम करते रहेंगे, आते रहेंगे, फिर भोगते रहेंगे, फिर विश्राम करने जाएंगे, फिर जग कर आएंगे, इस शरीर में रहकर फिर भोग को भोगेंगे, फिर थकेंगे, जाएंगे, ये काफी दिन चलेगा। शेष कर्मोपभोगार्थम प्राणश्चरति केवलम। जीवात्मा चिदाभास इंद्रियों के सहित करणों के सहित जब विश्राम को गया, जगने के बाद फिर इसको अपने कर्मों का फल भोगना है, और इस शरीर के बिना कर्मों का फल भोग नहीं पाएगा, इसलिए इसको टिकाए रखना बहुत जरूरी है। ये मानते हुए वो प्राण इस शरीर को टिकाए रखने के लिए सुसुप्ति में जीव सहित करण जाने पर भी प्राण संचरित करता रहता है, शरीर को टिकाए रखता है, फिर ये जीवात्मा करणों के साथ जब जगता है इसी शरीर में आता है, फिर और कर्मों के फलों को भोगता है, फिर थक जाता है, वो चला जाता है विश्राम करने, तब तक प्राण इसकी रक्षा करता है, फिर ये उत्थान को प्राप्त होते हैं, फिर इन्हीं गोलोकों में बैठते हैं, अपने शुभाशुभ कर्म को भोगते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर चले जाते हैं। प्राण का काम है कि इसको टिकाए रखना, उसके लिए वह संचरित करता रहता है, लेकिन इतनी मात्र से उसको आत्मा मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्ञान नहीं है, संवेदना नहीं है, चेतना नहीं है उनमें। ये बात अलग है कि चेतना न होने पर भी जीवन के लिए बड़े उपकारक है, बड़े काम की चीज है, शरीर को टिकाए रखता है, अन्न को पचाए रखता है, रक्त का संचार करता रहता है। प्राणस्य तत्र चैतन्यम करणो परमे यदि प्राणे व्यप्रियमाणे तो करणो परम कथम साम्राज्य रणोद्युक्ति विरमंति न सैनिका। दृष्टांत दिया लौकी, प्राण यदि वास्तव में आत्मा होता तब प्राण के चलते, प्राण के रहते, प्राण के मौजूद काम करते हुए फिर इंद्रियां और अंतःकरण विश्राम नहीं कर पाता। यदि प्राण ही मालिक होता, प्राण ही आत्मा होता, तब प्राण के कर्म करते रहने पर इंद्रियां और अंतःकरण विश्राम को प्राप्त नहीं कर पाते। उदाहरण दिया, आजकल तो ऐसा नहीं माना जाता लेकिन उदाहरण दिया सुरेश्वराचार्य जी ने, जैसे सम्राजी ही रणोद्युक्ते विरमंती न सैनिका। राजा रणभूमि में डटा रहे, युद्ध में लगे रहे और सारे के सारे सैनिक कहें कि तुम लड़ना हो तो लड़ लो, हम तो आराम करने जाएंगे, ये संभव होगा है? राजा युद्ध भूमि में खटा रहे, डटा रहे और सैनिक कहे कि हम थक गए हैं, आराम करने जाएंगे, ऐसा नियम है क्या कहीं है? प्राण क्या हुआ, यहां उपमा क्या दी? प्राण मान लो कि सम्राट है ना, और वास्तव में प्राण सम्राट होता, सम्राट का अर्थ यहां ले लेना आत्मा, वास्तव में प्राण आत्मा ही होता, परमात्मा ही होता, तब तो प्राण क्रियाशील होते हुए इंद्रियां और करण अंतःकरण ये विश्राम नहीं कर पाते। जैसे राजा काम लड़ते हुए, राजा यदि युद्ध भूमि में लड़ रहा हो तो सेना विश्राम नहीं कर पाते, सेना को आराम करने को कब मिलता है? तो या तो राजा आराम कर रहा हो तो वो भी आराम करे, तो फिर राजा कौन होगा? बोले प्राण को राजा तो नहीं मान सकते, तो राजा कोई और होगा। सुषुप्ति अवस्था में इंद्रियां सब काम क्यों करती हैं? नहीं, सुषुप्ति अवस्था में इंद्रियां क्यों विश्राम करती हैं, अंतःकरण क्यों विश्राम करता है, प्राण क्यों काम करता है? तो कई बार होता है कि राजा आराम भी कर ले तो सेनापति के साथ युद्ध होता रहता है, सेनापति लड़ता रहता है, राजा आराम करेगा सेनापति लड़ेगा, सेनापति के साथ और सैनिक लड़ेंगे, कई बार ऐसा होता है। क्योंकि इन सब का जो मालिक है सम्राट, तो आत्मा इनसे भिन्न है, वो आराम करने चला गया, इसलिए ये इंद्रियां भी सैनिक भी आराम करने चले गए, युद्ध की विश्रांति हुई। तब तक शरीर को कौन टिकाएगा? बोले प्राण टिकाएगा, बस खत्म हो गई बात। तो आत्मा माने प्राण को सम्राट की तरह नहीं लेना चाहिए, आत्मा की जगह नहीं लेनी चाहिए। इस भाव से यह सिद्ध हो गया कि भोग में कभी भी सुख नहीं है, इस दृष्टांत से भोग से उपरम में ही सुख है। तृष्णाक्षय सुखस्य इति कलम नार्हन्ति षोडशी, शास्त्रों में लिखा है तृष्णा समस्त तृष्णाओं का क्षय होने पर जो सुख की प्राप्ति होती है, उस सुख के जगह ये विषय भोग से प्राप्त होने वाला सुख तो एक कला भी नहीं है, 16 कला में से एक कला भी नहीं है, है? 16वीं कला भी नहीं है विषय भोग से प्राप्त होने वाला सुख। किस सुख के सामने? तृष्णा क्षय जन्य सुख के सामने भोग जन्य जो सुख है वह एक कला के बराबर भी नहीं है। इसलिए तो कहा है ना, न सुखम देवराज्य से न सुखम चक्रवर्ती ना, यत सुखम वीतरागस्य मुने रेकांतवासिना सेविना। जो सुख चक्रवर्ती को है जो सुख सम्राट को है, जो सुख इंद्र को है, इन लोगों को होने वाला सुख तो उस योगी को चित्तवृत्ति निरोध करके विश्रांति को प्राप्त हुआ हुआ जो योगी है, तृष्णा रहित एकाद सेवन करने वाला जो योगी है, उस योगी को जो सुख प्राप्त होता है उसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है इंद्र का सुख, चक्रवर्ती सम्राट का सुख। तो किस भ्रांति में पड़े हो संसार के लोगों, इन वाक्यों से यही सिद्ध हो रहा है। लेकिन इन संसारियों को कौन उपदेश करने जाएगा? ये है ये उपदेश इन संसारियों को, भोग विलास में लगे हुए को ये उपदेश सुनाने कौन जाएगा भाई? महात्मा लोग एक दृष्टांत देते हैं। एक राजा था, बड़ा विलासी था, उसको अपने राज्य की कोई चिंता ही नहीं थी, उसको भोग ही चाहिए, लंपट था, विषय आसक्त था। और राजा के विषय आसक्ति के चलते राष्ट्र नष्ट हुए हुए कई उदाहरण हैं, इतिहास है कि नहीं हमारे? राजाओं के भोग विलास में चलते राज्य की व्यवस्था खत्म हुई और राष्ट्र चौपट हुआ, प्रजा दुखी हुए, विप्लव हुआ है, अशांति हुई है। ऐसे तो कई इतिहास हमारे भारतीय इतिहास को पढ़ने में मिलता है। तो एक महात्मा थे, उनके मन में यह आ गए कि इस राजा को थोड़ा सा सावधान तो करना चाहिए। तो कहते हैं कि महात्मा भी बहुत उठपटांग होते हैं कभी कभी, और उनकी उठपटांगी ही बहुत काम करती है, बड़ा हितकारी हो जाता है। तो कहते हैं कि राजा जिस समय विलास में, भोग विलास में लगा हुआ था, रात्रि के समय में सुरा और सुंदरी के मस्ती में लगा हुआ था, महात्मा चले गए उसके छत में जाकर जोर जोर से नाचने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे, इधर से उधर, उधर से उधर दौड़ने लगे। और स्वाभाविक ही है कि नीचे भोग और विलास में लगे हुए को विक्षेप होना स्वाभाविक ही था। राजा को बड़ा विक्षेप होने लगा, पता लगा कि छत में कौन दौड़ रहा है, कौन हल्ला कर रहा है, कौन आवाज कर रहा है, पता लगाओ। तो उसका मंत्री गया, पता लगाया, देख फक्कड़ महात्मा, लगौटी लगाया है, राख लपेट लिया है, कुंभ मेले में देखा है ना तुम लोगों ने, हरिद्वार का टीवी में तो देखा, वहां नहीं गए वो तो, कैसे कैसे पकड़ महात्मा, लंगोटी भी नहीं है, राग लपेट लिया है और नाच रहे हर हर महादेव, क्या मस्ती है उनकी। उसी तरह छत में दिगंबर और एकदम उछल रहा है, कूद रहा है। तो यहां क्यों उछल रहा है, क्यों कूद रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर क्यों दौड़ रहा है? तो महात्मा ने कहा कि मेरी कमंडलू खो गई, उसको खोज रहा हूं। तो राजा ने पूछा, कमंडलू खो गई और मेरे छत में? जहां खो गई है वहीं खोजना चाहिए मूर्ख, और मेरे छत में? तेरा कमंडलू का क्या संबंध है, तू कब आया था यहां? कभी नहीं आया था। फिर तो जहां कमंडलू खो गई है वहीं खोज, यहां क्यों? बोले ठीक है, तुम मुझे तो कह रहे हो कि यहां कमंडलू खोजने से नहीं मिल सकता है, और तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो वही काम कर रहे हो, तुम विषयों में सुख खोज रहे हो तो मिलेगा, और विषयों में सुख मिलता है तो तुम्हारे छत में मेरी कमंडलू क्यों नहीं मिल सकती है? विषयों में सुख मिल सकता है तो फिर तुम्हारे छत में मेरे कमंडलू क्यों नहीं मिल सकता है? और यदि तुम्हारे छत में मेरा कमंडलू नहीं मिल सकता है तो ये निश्चय समझ लेना कि इन विषयों में तुम्हें भी सुख नहीं मिलेगा। ये तो सुख की भ्रांति है, ये भ्रांति टूटना बहुत जरूरी है। फिर मारा सुख कहां है लेव जी? और ये तू बता, मेरा कमंडलू कहां मिलेगा, तू ही बता। बोले तुम्हारी कमंडलू जहां तुम बैठे थे वहां जहां छूटा है वहीं आसपास में खोज लो, नदी के किनारे में कहीं छूट गया हो, है तुम सन्यासी हो, नदी किनारे घूमते हो, वहीं कहीं छूटा हो। बोले वो तो मुझे भी पता है कि नदी किनारे में मिलेगा, फिर यहां क्यों खोजने आए? बोले मूर्ख, तुझे पता नहीं है ना कि सुख आनंद आत्मा में मिलेगा, कहीं और जगह मिलेगा, वो बताने के लिए आया हूं। इन विषयों में नहीं मिलने वाला है सुख। न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिना यत् सुखम वीतरागस्य मुनि रेकांतस्य विनः तस्मान्न करणस्वामी प्राणो भवति मर्हति मनस प्रेरके पुंसि विरते विरमस्त्यतः करणानि समस्तानि तेषां स्वामी ततः पुमान। तब फिर क्या मन आत्मा है? बोले आत्मा भी मन आत्मा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मन क्षणिक है और आत्मा क्षणिक नहीं हो सकता है। बुद्धि क्षणिक है, वह भी आत्मा नहीं हो सकता है। और सभी इंद्रियों का समूह भी आत्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि संघात यदि आत्मा मानते हैं तो एक इंद्रिय के नष्ट होने पर और सब निष्क्रिय हो जाएंगे। आपके गाड़ी में सब कुछ ठीक है और एक टायर यदि खत्म हो गया, पंचर हो गया, तो सारे गाड़ी बेकार चला गया कि नहीं? सब मिलकर ही तो गाड़ी गाड़ी बना हुआ है। और एक ब्रेक खत्म हो गया तो सारा गाड़ी बेकार हो गया। ये अवयवों से बना हुआ, मिलकर संघात से जो बना हुआ होता है, उसमें एक की कमी से सब कुछ निष्क्रिय हो जाते हैं। सारे इंद्रियों और करणों को मिलाकर आत्मा, समूह रूप आत्मा मानोगे तो उसमें से एक इंद्रियों के विकल होने पर और सब कुछ विकल बेकार हो जाएंगे, इसलिए समूह को भी आत्मा नहीं मान सकते। येषां संघात आत्मा चेद एक देशे पृथक्कृते न चैतन्यं प्रसज्येत संघाता भावतस्तदा। देहस्यांतर्गतोऽप्यात्मा व्याप्य एवेति बुध्यते अणु प्रमाण चेदेश व्यापनुयान्नाखिलं वपुः। तब फिर आत्मा को क्या मानना चाहिए, कैसा मानना चाहिए? कहीं विचार होने पर अनेक मतभेद खड़े हो गए। किसी ने कहा कि आत्मा बिल्कुल अणु है, अति सूक्ष्म है। संघात स्थूल है, स्थूल आत्मा नहीं तो अति सूक्ष्म आत्मा है। तो कहा कि सूक्ष्म अणु भी आत्मा नहीं हो सकता है। देह परिमाण का आत्मा है, जैसे कि कुछ लोगों ने माना है, देह परिमाण भी आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि बालक था उस समय उस परिमाण का आत्मा था, यौवन हो गया तो देह बड़ा हो गया, तो फिर वह आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त नहीं होगा। तो क्या फिर आत्मा भी यौवन के साथ बढ़ता जाएगा? फिर उसके बाद बूढ़ा हो गया तो आत्मा भी बूढ़ा होने लगेगा, और मरने के बाद उसको कर्म अनुसार चींटी में जाना हो तो फिर कैसा आत्मा हो? फिर हाथी में जाना हो तो देह परिमाण, आत्मा का परिमाण आकार फिक्स नहीं मानना चाहिए। जैसे कि किसी लोगों ने कहा जितना बड़ा शरीर है उतना ही आत्मा है, इस तरह मानते। ऐसे हमको किसने सुनाया है, आजकल एक धर्म चला हुआ है और बड़ा उनकी प्रसिद्धि है, बहुत जगह है। वो लोग कहते हैं कि स्त्री, एक बार स्त्री हो गई तो उस स्त्री आत्मा, स्त्री शरीर छोड़ने पर पुरुष शरीर प्राप्त नहीं कर सकता। पुरुष, एक बार पुरुष हो गया तो उस पुरुष आत्मा पुरुष शरीर छोड़कर स्त्री शरीर को प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य, एक बार मनुष्य हो गया तो मनुष्य शरीर छोड़कर पशुआदि योनि को प्राप्त नहीं कर सकता। पशु, एक बार पशु हो गया, उस शरीर को छोड़ने के बाद मनुष्य आदि शरीर को प्राप्त नहीं कर सकता। ये शत प्रतिशत मूर्खता का ही लक्षण है। ये शास्त्र का अध्ययन न करने का प्रतिफलन है कि आत्मा कोई ईंट बनाने की मशीन में, सांचे में बनाया गया आत्मा नहीं है। क्योंकि शरीर में एक बार आत्मा बन गया तो वही शरीर मिले तो फिट बैठे, और वो शरीर न मिले तो फिट न बैठे। ये तो मूर्खता का लक्षण है। ये आत्मा पर विचार न करने वालों की ऐसी अभिव्यक्ति है। ये सारे के सारे विभेद किसके चलते हैं? तो एषमेषा महामाया बाधीनाम अपि मोहिनी यत् साक्षात् कृते सद्यो लीयते च सदा शिव। ये तो केवल भगवान शिव के साक्षात्कार जब तक नहीं करोगे, तब तक इस प्रकार के वाद विवाद और मतवाद सांप्रदायिक होते रहेंगे, आत्मा के बारे में कोई निश्चय नहीं कर पाएगा। ज्ञानमूर्ति दक्षिणामूर्ति शिव की कृपा होगी, तब फिर वह माया मोहिनी माया शक्ति विलास कल्पित महा व्यामोह संहारिणे, उस व्यामोह का संहार करने की क्षमता केवल एकमात्र शिव में है। उनकी कृपा से ही माया शक्ति का विलास नाश होगा, तब यह भ्रांति नष्ट हो जाएगी, तो यथार्थ आत्मा का अपरोक्ष हो सकता है। ऐसे कृपालु गुरु मूर्ति को हम नमस्कार करते हैं और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम
हरिओम।